ये आकाशवाणी है। अब आप सकलैन अख्तर से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 बैठक में भाग लेने के लिए आज शाम इटली के अपोलिया के लिए रवाना हो गए हैं। रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार भारत इटली रणनीतिक भागीदारी और हिंद प्रशांत तथा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि वे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के आमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली यात्रा पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लगातार तीसरे कार्यकाल में G7 बैठक में भाग लेने के लिए इटली की अपनी पहली यात्रा से वह प्रसन्न हैं। श्री मोदी ने कहा कि पिछले साल इटली की प्रधानमंत्री की भारत की दो यात्राओं से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिला है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट में कृपांक प्राप्त करने वाले 1,563 अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा 23 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने आज कहा कि इस बारे में शीघ्र ही सूचना जारी की जाएगी और इन परीक्षार्थियों को ईमेल के माध्यम से सूचना प्रदान की जाएगी। एजेंसी ने कहा कि दोबारा परीक्षा का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद लिया गया है। न्यायालय ने 1,563 परीक्षार्थियों को प्रदान किए गए अनुग्रह या पूरक अंक वापस लेने का निर्देश दिया था। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की बात से इनकार किया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि नीट परीक्षा में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार ने अगले 5 वर्ष में देश के रक्षा निर्यात को बढ़ाकर 50,000 करोड़ रूपये तक करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत अब तक 21,000 करोड़ रूपये से अधिक के रक्षा साजो सामान का निर्यात कर चुका है। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा और सुरक्षा बलों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। श्री सिंह ने मंत्रालय की पहली 100 दिनों की कार्य योजना पर एक समीक्षा बैठक भी की। भारत ने 7 जून को चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर के संदर्भ को स्पष्ट रूप से खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने कहा कि किसी अन्य देश को इस मुद्दे पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। एनसीआरबी ने नए आपराधिक कानूनों के बारे में पूरी सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक मोबाइल ऐप एनसीआरबी आपराधिक विधि का संकलन जारी किया है। नए आपराधिक कानून अगले महीने की 1 तारीख से प्रभावी होंगे। इस ऐप में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई है। ये ऐप ऑफलाइन भी काम करेगा। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। शिक्षा मंत्रालय ने विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिकार और पीएम पोषण के तहत मुफ्त पोषण संबंधी सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक दिशा निर्देश जारी किया है। मंत्रालय ने कहा कि सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त विशेष स्कूलों में पढ़ने वाले विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाए। इनमें निशुल्क वर्दी, पाठ्य पुस्तकें और प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत मध्यान्ह भोजन शामिल है। कुवैत में आग की घटना के बाद विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज मंगाफ में उप प्रधानमंत्री शेख फहद सऊद अल सबा से मुलाकात की। उप प्रधानमंत्री ने कुवैत के अमीर की ओर से इस घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त की और सभी आवश्यक सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने भीषण गर्मी के कारण कल उत्तर पश्चिम, उत्तर और पूर्वी भारत में ऑरेंज तथा रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ हिस्सों में गंभीर लू की स्थिति बनी रहेगी। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में किंग्सटाउन में बांग्लादेश और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला जारी है। बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में नीदरलैंड्स को 160 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड ने 13 ओवर में 3 विकेट खोकर 93 रन बना लिए हैं। स्टटगार्ड ओपन में भारतीय खिलाड़ी यूकी भांबरी और फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी की जोड़ी ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।